हरे कृष्ण। बलराम जी भगवान के शाश्वत सहचर हैं। राम के साथ लक्ष्मण के रूप में, कृष्ण के साथ बलराम के रूप में तथा चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में वे सदैव भगवान की हर लीला में उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के सेवक स्वरूप हैं। उनका सदैव एक ही लक्ष्य रहता है कि भगवान को किस तरह प्रसन्न किया जाए। हमारे वक्ता श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी हमें श्री बलराम तत्व, उनके प्राकट्य तथा ब्रज में उनकी लीलाओं के विषय में हमें बताएंगे। श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय से साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आए। लगभग 20 वर्षों से वे इस्कॉन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में वे इस्कॉन कारवार कर्नाटक के अध्यक्ष हैं। वह विभिन्न कॉलेजों तथा कंपनियों में मन पर नियंत्रण, मृत्यु के पश्चात जीवन, सफल शिक्षण कौशल व एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति पर सेमिनार भी लेते हैं। प्रभु जी भारत में गोवा, मुंबई, मैंगलोर, बेंगलोर एवं वृंदावन तथा विदेशों में जैसे केन्या, युगांडा, जाम्बिया व मल्लावी में भी सेमिनार लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं अनेक मधुर व दिव्य लीलाओं के अमृत सागर श्री बलराम जी के विषय में श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बलराम जी के आविर्भाव की कथा को कहेंगे, कैसे प्रकट हुए, क्या उसका इतिहास था, कैसे लीला हुई, क्योंकि भगवान का प्राकट्य भी एक लीला है। भगवान जो करते हैं वो लीला है, इस सृष्टि की रचना करते हैं वो लीला है, यहाँ आते हैं वो लीला है, असुरों को मारते हैं वो लीला है, केवल आनंद लेते हैं अपने मित्रों के साथ वो लीला है। भगवान की लीलाओं में कोई भेद नहीं है। कोई भी लीला भगवान की हमारे हृदय को शुद्ध कर सकती है। लेकिन जब हम भगवान के प्राकट्य की लीला सुनते हैं, आविर्भाव की लीला सुनते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने भी मिलता है और साथ साथ आनंद भी आता है कि भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान आ रहे हैं हम सबको बचाने के लिए, हम सबको प्रेम प्रदान करने के लिए, हम सबकी सुरक्षा करने के लिए और हम सबको अपने धाम वापस ले जाने के लिए। तो ऐसे बलराम जी भी आए, आविर्भाव हुआ, तो उनके आविर्भाव की लीला कुछ इस प्रकार है। जैसे हम सब जानते हैं कि कंस राज्य कर रहा था, बड़ा क्रूर शासक था, लेकिन राज्य जब उसका नहीं भी था, उसके पिता जब राज्य करते थे, तब उसकी जो बहन है देवकी, उसका विवाह हुआ। कंस ने बड़े प्रेम से अपनी बहन को इस विवाह में, उन्होंने बहुत सारे अच्छे उपहार दिए और वो चाहते थे कि मेरी बहन है तो इसको बहुत अच्छी तरह से इसका विवाह होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो। तो काफ़ी लंबे समय से उन्होंने तैयारी की वसुदेव और देवकी के विवाह की। और फिर जिस दिन विवाह हुआ, स्वयं वे रथ को चलाने के लिए आए कि मेरी बहन है, मैं छोड़कर आऊँगा, सारथी को हटा दिया। अब रथ चलाने ही वाले थे कि अचानक भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई और कहा गया कि मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू अब ले जा रहा है, इसका ही आठवां पुत्र तेरी हत्या करेगा। कंस घबरा गया। इस जगत में हम सबको बहुत से भय हैं, डर है, लेकिन सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। कोई मरना नहीं चाहता। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो न मरना ये जीव का स्वभाव है। हम में से कोई नहीं मरता, इसीलिए जो चीज़ अस्वाभाविक है उससे हमें डर लगता है। अगर जी मरना हमारे लिए स्वाभाविक होता, हर जीव मरता, तो फिर हमें डर नहीं लगता। जो चीज़ स्वाभाविक है उसके लिए क्यों डरे? मछली पानी में तैरने से डरती नहीं है क्योंकि वो उसके लिए स्वाभाविक है। लेकिन मनुष्य के बच्चे को जब फेंका जाता है पानी में और उसे तैरना नहीं आता तो बहुत घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन मछली का छोटा सा बच्चा भी पानी में आराम से तैर लेता है। पक्षी आकाश में उड़ता है, उसको डर नहीं लगता क्योंकि वो स्वाभाविक है उसके लिए। इसी तरह हमारे लिए, जीव के लिए जो स्वाभाविक है वो भय नहीं उत्पन्न करता, लेकिन मृत्यु ये स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जीव को न तो मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो इसीलिए जीव भयभीत हो जाता है बद्ध अवस्था में अगर मृत्यु का भय उसको आता है। ये सबसे बड़ा भय है हमें इस जगत में। तो कंस भी बड़ा भयभीत हो गया कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई मार देगा। तो कंस ने सोचा कि अभी देवकी को ही मार देते हैं, न देवकी रहेगी, न आठवां संतान होगी और ना मैं मरूंगा। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि जो चीज़ हमें भय प्रदान कर रही है उसको अगर हम हटा दें तो भय नहीं होगा। ये सत्य नहीं है। इस जगत में भय बना रहेगा। मृत्यु तो सबको आनी है, ये जगत ही जन्म मृत्यु का चक्र है, तो इसलिए इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन फिर भी कंस जैसे लोग जो भगवान को समर्पण नहीं करते हैं, अन्य मार्गों के द्वारा अपनी मृत्यु से बचने का प्रयास करते हैं। मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है और वो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रय लेना, क्योंकि वही अभय प्रदान कर सकते हैं, वही सही दृष्टि में अभय प्रदान करने के योग्य हैं या शक्ति उनमें है। इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। लेकिन कंस भयभीत था, मरना नहीं चाहता था, तो सोचा देवकी को मार देता। फिर उस समय वसुदेव जी से चर्चा हुई। वसुदेव जी ने बहुत समझाया कंस को कि कंस मृत्यु तो सबको आती है, तुम इसको मारकर अपनी मृत्यु से नहीं बच सकते, और फिर इतने बड़े व्यक्ति हो, अपनी बहन को उसके विवाह के समय मारना, ये कौन सी शूरवीरता है। लेकिन फिर भी कंस नहीं मान रहे थे तो वसुदेव जी ने एक वचन दे दिया। वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें तो देवकी के संतानों से भय है, मैं देवकी की संतान तुम्हें लाकर दे दूंगा, चिंता नहीं करना। तो फिर कंस मान गया, क्योंकि कंस जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य पर रहते हैं। तो फिर उसने छोड़ दिया। पहली संतान हुई और उस पहली संतान को लेकर, नवजात शिशु को लेकर वसुदेव कंस के सामने चले गए, लो कंस मार दो इसे। तो कंस ने देखा तो उनकी इस सत्यता को देखकर, उनके इस कर्मनिष्ठता को देखकर कंस भी पिघल गया। कंस ने सोचा कि कितने महान हैं ये वसुदेव जी, ये जानते हुए कि मैं उनके बच्चे को मार दूंगा, अपने वचन को पूरा करने के लिए बच्चे को लेकर आए हैं। हृदय पिघल गया। तो फिर कंस ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इससे कोई भय नहीं है, ये तो पहली संतान है, मुझे तो आठवें से भय है, इसलिए इसे आप ले जाइए। वसुदेव जी वापस आ गए, लेकिन फिर आगे चलकर कंस को नारद मुनि ने समझाया, क्योंकि नारद मुनि ये नहीं चाहते थे कि कंस एक भक्त की सेवा कर दे, एक भक्त को प्रसन्न कर दे, क्योंकि भक्त की सेवा और भक्त का प्रसन्न करने से जितने उसने पाप किए हैं वो तो सारे कट जाएंगे, और अगर पाप कट गए तो भगवान प्रकट नहीं होंगे मारने के लिए, और नारद मुनि चाहते थे कि भगवान प्रकट हों, इस पृथ्वी के भार को कम करें। तो फिर इसीलिए नारद मुनि ने जाकर कंस को समझाया कि कंस तुम जानते नहीं हो, ये जो विष्णु है बड़ा मायावी है, किस तरफ से गिनोगे? पहला बच्चा भी आठवां हो सकता है, आठवां बच्चा पहला भी हो सकता है। भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई थी आठवां, उन्होंने एक कमल का पुष्प लिया जिसकी आठ पंखुड़ियां थीं, तो नारद मुनि ने कहा अगर यहां से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होता है, लेकिन अगर यहां से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पहला हो जाता है, तो तुम्हें क्या पता विष्णु कैसे भी आ सकता है। और कंस ने कहा ये बात तो सही है, और तुरंत कंस ने जेल में डाल दिया देवकी वसुदेव को और मार डाला पहले बच्चे को। तो ऐसे 6 बच्चों को उसने मार दिया एक के बाद एक। देवकी जन्म देती थी और फिर कंस आकर जैसे ही जन्म होता था मार देता था। प्रश्न मन में ये आता है कि जब देवकी जानती थी कि संतान के जन्म होते ही कंस मार देगा, तो फिर देवकी जन्म क्यों दे रही थी? कारण ये था कि देवकी इंतजार कर रही थी कृष्ण के आने का, देवकी कष्टों को सहन कर रही थी। एक माँ के लिए अपने नवजात शिशु को अपनी आंखों के सामने मरते देखना ये बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन देवकी उन सारे कष्टों को सहन कर रही थी कृष्ण के प्राकट्य के लिए, क्योंकि उसने सुना था कि 8वीं संतान कंस का वध करेगी, भगवान आने वाले हैं। तो देखिए भगवान को पाने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट तो लेना ही पड़ता है। तो देवकी ने अपने 6 पुत्रों को मरते हुए देखा और फिर 7वीं संतान अर्थात बलराम जी देवकी के गर्भ में आए, है रोहिणी नंदन लेकिन आए देवकी के गर्भ में। और जब वो आए तो उस समय देवकी को अनुभव हुआ कि एक दिव्य शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है। देवकी प्रसन्न हो गई। कंस ने भी जब देखा देवकी के मुख को तो कंस भी भयभीत हो गया, सोचने लगा कि कोई विशेष शक्ति आई है, शायद विष्णु आ गया है, शायद वो मुझे मारने वाला है। तो कंस भी भयभीत हो गया था। तो बलराम जी क्यों आए? ये कहना चाहिए कि बलराम जी कृष्ण के आने की तैयारी करने के लिए आए। अब कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में आने वाले हैं तो 7वें के रूप में आए कि तैयारी करें, या कहना चाहिए कि भगवान से पहले वो आ जाएं ये बताने के लिए कि जब उनकी कृपा होती है तभी श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। बलराम जी की कृपा के बिना, आदि गुरु की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये बलराम जी के प्राकट्य से सीखा जाता है कि बलराम जी पहले आ रहे हैं ये बतलाने के लिए कि जब हम एक गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं तब वो कृष्ण को प्रसन्न करता है और तब कृष्ण की कृपा आती है। अपने मन से की गई भक्ति कृष्ण की कृपा को आकर्षित नहीं करती। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधिम विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पातेव कल्पते। अगर आप हरि की भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन श्रुति स्मृति पुराण अर्थात शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहे हैं तो फिर केवल उत्पात होगा आपके जीवन में और समाज में। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जाओ ऐसे गुरु के पास जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने सत्य को देखा है, और क्या करो? उनके पास जाकर उन्हें नमस्कार करो, उन्हें समर्पण करो, तद्विद्धि प्रणिपातेन उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, और तब वे लोग तुम्हें वो ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे आप मेरे पास आ सकोगे। तो इसीलिए गुरु का सेवा या गुरु की आवश्यकता जीवन में है जिससे हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकें। तो बलराम जी को फिर इस तरह जब वो गर्भ में थे वहाँ पर, तो श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया और योग माया को आदेश दिया कि जाओ ब्रज में जाओ और वहाँ जाकर बलराम जी जो मेरे अंश हैं वो देवकी के गर्भ में हैं, उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो ताकि वे रोहिणी नंदन कहलाएं। अब रोहिणी कहाँ थी? रोहिणी उस समय नंद महाराज के यहाँ ब्रज में थी। यहाँ कंस के भय से, क्योंकि कंस ने देवकी वसुदेव को बहुत कष्ट दे रखा था, तो फिर देवकी या वसुदेव की जो अन्य पत्नियाँ हैं वे फिर अलग अलग चली गई कि कहीं हमको भी कष्ट ना दे। तो रोहिणी भी वसुदेव की ही पत्नी है, तो इसीलिए वे भी वहाँ से चली गई नंद महाराज के पास रह रही थीं, यशोदा और नंद महाराज के पास में। तो वहाँ पर उनके गर्भ में स्थानांतरित किया गया। तो देखिए भगवान की लीला कैसे एक गर्भ से बच्चे को निकाल कर दूसरे गर्भ में स्थानांतरित भी कर देते हैं। तो भगवान ने योग माया से कहा कि इसको करो, तो फिर योग माया ने इस कार्य को किया। इसीलिए एक नाम उनका हुआ संकर्षण। संकर्षण मतलब जो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में उसको खींच कर लाया गया या स्थानांतरित किया गया, तो वो भी संकर्षण कहलाते हैं। और उस समय भगवान ने आदेश दिया योग माया को और ये भी कहा कि क्योंकि आप ये कार्य कर रही हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आगे चलकर आप अलग अलग नामों से जानी जाएंगी, दुर्गा, चंडी, काली, वैष्णवी, कुमारी, ऐसे अलग अलग नामों से जानी जाएंगी और आपकी पूजा होगी। तो देखिए क्योंकि उन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया वो सभी के लिए पूजनीय हो गई। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की सेवा में लगे होते हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हैं, वो देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान ने आदेश दिया योग माया को और फिर योग माया चली गई ब्रज में और वहाँ से उन्होंने स्थानांतरित कर दिया रोहिणी के गर्भ में, जहाँ कुछ समय तक बलराम जी रहे। अब कृष्ण के प्राकट्य का समय भी हुआ था, तो कृष्ण और बलराम जी के जन्म के बीच केवल कुछ दिनों का अंतर है, 8-9 दिन इतना ही। बलराम जयंती से लेकर जैसे बलराम पूर्णिमा के दिन बलराम जी का आविर्भाव हुआ और जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का, तो इतना ही अंतर उनके जन्म में है। तो बलराम जी को जब गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो उस समय रोहिणी देवी वहाँ पर ब्रज में रह रही थी और वहाँ उन्होंने बलराम जी को जन्म दिया। तो बलराम जी का आविर्भाव ब्रज में हुआ, गोकुल में जहाँ वो रह रही थी नंद बाबा के घर में। तो ऐसे बलराम जी बलराम पूर्णिमा के दिन, बलराम जयंती के दिन वो प्रकट हुए वहाँ पर। और फिर जब प्रकट्य का समय था, जब बलराम जी प्रकट होने वाले थे, वैसे बलराम जी जैसे हमने बताया आदि गुरु हैं, तो वो प्रकट होते हैं और प्रकट होने के समय भी उन्होंने बहुत दिव्यता का अनुभव करवाया। जैसे रोहिणी के जब गर्भ में गए तो रोहिणी बहुत प्रसन्न हो गई, रोहिणी के जो कांति थी वो बहुत बढ़ गई। भगवान के आने से ये लाभ होता है, जो लोग भगवान के भक्त हैं वे लोग भगवान के प्राकट्य से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो असुर हैं वो भगवान के प्राकट्य से भयभीत हो जाते हैं। इसका वर्णन कई स्थानों पर आया है, जैसे जब ऐसा वर्णन है कि भगवान प्रकट होने वाले थे वराहदेव जो हिरण्याक्ष का वध करने वाले हैं, तो उस समय दीति जो माता हैं हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की, तो उनके स्तनों से खून बहने लगा, भयभीत हो गई। लेकिन जब भगवान प्रकट होने वाले थे तो सारे जो देवता हैं, सारे जो भक्त हैं, सारे ऋषि मुनि हैं, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो बलराम जी बड़े भाई के रूप में जब प्रकट होने वाले हैं तो आने से पहले ही उन्होंने आनंद दे दिया। राम हैं, खुद भी रमण करते हैं, खुद भी आनंद लेते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो ये जान लीजिए कि भगवान का आविर्भाव ये हमें आनंद प्रदान करने के लिए होता है, हमें इस संसार चक्र से बाहर निकालने के लिए होता है। भगवान का आविर्भाव के कई कारण हैं। भगवान आते हैं इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। बलराम जी आए और उन्होंने कई असुरों का वध किया, उन्होंने युद्ध में भी भाग लिया कई युद्ध में। तो भगवान आते हैं इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए या फिर धर्म की स्थापना के लिए। और उससे भी महत्वपूर्ण उद्देश्य भगवान का होता है कि वो अपनी लीला दर्शाते हैं जीव को आकर्षित करने के लिए। जैसे इस जगत में हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपको किसी पदार्थ की ओर, किसी चीज़ की ओर आकर्षित करना चाहता है तो उसका एक विज्ञापन बना देता है, और जब आप विज्ञापन देखते हो टीवी में इत्यादि जगह पर, तो आप आकर्षित हो जाते हो कि अरे हमें भी ये चीज़ चाहिए, हम भी इसको लेंगे। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की लीलाएं हो रही हैं उनका विज्ञापन करने के लिए, उनको यहाँ पर आपको दिखलाने के लिए कि देखिए कितना आनंदमय जगत है वो, उसके लिए भगवान आते हैं। तो भगवान यहाँ लीला, वैसे भगवान को इस भौतिक जगत में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैसा जगत है ये? ये ऐसा जगत है जहाँ हम भगवान को चाहते नहीं हैं, जहाँ हम नहीं चाहते कि वो आए। इतने सारे लोग हैं जो विरोध करते हैं भगवान का, जो कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान निराकार हैं। ऐसे सारे लोगों के रहते हुए भी इस स्थान में जहाँ हम कहते हैं हम ही भगवान हैं, हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है, कई तरह के सिद्धांत लोग कहते हैं। कोई कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, दूसरे कहते हैं अगर भगवान है भी तो वो अपने स्थान में रहते हैं, हम अपने स्थान में, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तीसरे प्रकार के लोग कहते हैं कि भगवान है भी तो केवल इसलिए कि हमें जो आवश्यकता है उसकी वो पूर्ति कर दे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसी अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन भगवान के भक्त हैं जो ये समझते हैं कि भगवान है और हमारा भगवान से संबंध है, शाश्वत संबंध जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, और उस शाश्वत संबंध के चलते हमारा कर्तव्य ये है कि हम भगवान की सेवा में लगें, अपने जीवन को समर्पित करें उनकी सेवा में। और बलराम जी का आविर्भाव यही सेवा का भाव सिखलाने के लिए हुआ है। तो बलराम जी आते हैं ये सिखलाने के लिए कि कैसे हमें सेवा करनी चाहिए। तो इसीलिए ब्रज में वो प्रकट होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तो आने का कारण क्या हुआ? ये सिखलाने के लिए कि सेवा क्या करनी है। बाहर तो कम करते ही हैं, आनंद भी देते हैं लोगों को। तो जिस प्रकार विज्ञापन होता है, विज्ञापन के द्वारा हम आकर्षित होते हैं, ऐसे ही भगवान भी लीलाएं करते हैं, एक विज्ञापन देते हैं कि आओ मेरे धाम में, मेरा धाम बहुत सुंदर है, बहुत सुखी स्थान है, इसीलिए उसे वैकुंठ कहते हैं। कुंठ यानी कष्ट, वैकुंठ यानी कोई कष्ट नहीं है, भगवान के धाम में केवल आनंद है, इसको दिखलाने के लिए भगवान लीला करते हैं। साथ ही साथ जब भगवान लीला करते हैं तो उसको सुनकर जो लोग देखते हैं लीलाओं को, जो सुनते हैं लीलाओं को या जो बोलते हैं लीलाओं को, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये भगवान से संबंधित हैं। पूर्ण रूप से भगवान शुद्ध हैं, उनसे संबंधित हर वस्तु शुद्ध है, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीलाएं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, उसमें कोई भेद नहीं है, एक ही है। कृष्ण के नाम में भी वही शक्ति है जो कृष्ण में है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। भगवान के नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। उसके लिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का संग कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से हमें यह जानना चाहिए कि भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है, वही शक्ति है, वही आनंद है। इसलिए जो बोलते हैं, जो भगवान की लीलाओं को सुनते हैं या जो देखते हैं भाग्यवान लोग, वे सब अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और फिर शुद्ध हृदय से भगवान की लीलाओं का आस्वादन करके भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। और यही उद्देश्य होता है भगवान के प्राकट्य का, और बलराम जी भी केवल इसीलिए आए। तो अब आगे हम उनकी लीलाओं का भी श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।